अध्याय एक। परमेश्वर की सेवा की बुलाहट। मानवीय माध्यमों पर आश्रित। पाप में गिरी हुई मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर मनुष्यों में से ही अपना प्रतिनिधि होने के लिए चुनता है, जो मनुष्य जाति को बचाने के लिए तत्पर होते हैं। वो स्वर्गदूतों को नहीं चुनता जो पाप में गिरे ही नहीं। यीशु मसीह ने मानव रूप लिया ताकि वो मानव जाति को बचा लें। पूरे संसार को बचाने के लिए एक स्वर्गीय मानवीय उद्धारकर्ता की जरूरत थी। प्रभु यीशु, जो आसानी से मिलने वाला प्रभु है, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए स्त्री व पुरुषों को ये काम सौंपा गया है। उस अद्भुत दृश्य के बारे में सोचो जहां स्वर्ग का वो सिंहासन जो चुने हुए 12 गोत्रों से घिरा हुआ है, वो मनुष्यों को उनके काम के आधार पर अलग अलग करने को तैयार है। मनुष्य जो स्वयं अपना उद्धार करने में असमर्थ, अयोग्य व निर्बल है, उसके लिए प्रभु अपनी आत्मिक सामर्थ और वचन जो सत्य है के द्वारा वो काम किया है, जो मनुष्य को उद्धार तक पहुंचाने और उसे उद्धार पाने के योग्य बनाता है। पुरुषों को जोपा भेजो और शिमोन को बुलवा भेजो। इस प्रकार के बुलावे से परमेश्वर ने इस बात का सबूत सुसमाचार प्रचार करने तथा अपनी संगठित कलीसिया के लिए दिया। कर्नेलियुस को क्रूस की कहानी सुनाने के लिए किसी स्वर्गदूत को नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि एक व्यक्ति को जो सेना में अधिकारी शतपति था, उसे चुना गया कि वो यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने तथा फिर जी उठने की बातों को बताता है। एक स्वर्गदूत को फिलिप्पुस के पास भेजा गया था कि वो इथियोपियन को सुसमाचार प्रचार करें। ये काम वो स्वर्गदूत खुद भी कर सकता था, किंतु परमेश्वर का काम करने का तरीका ये नहीं है। ये उसकी ही योजना है कि एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को जीवित परमेश्वर के बारे में गवाही दे। प्रेरित ने कहा, हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में है कि प्रभु की सामर्थ हम में प्रकट हो, न कि हमारी अपनी सामर्थ। परमेश्वर अपने सुसमाचार का प्रचार स्वर्गदूतों के द्वारा सारे जगत में करवा सकता था, किंतु ऐसा करना परमेश्वर की योजना में शामिल नहीं है। वो मनुष्य को ही चुनता है कि वो स्वयं ही इस काम को करे, जो खुद ही इस पापी संसार में घिरा हुआ है। वो एक मानव को ही अपना काम करने के लिए ठहराता है, इसलिए प्रेरित लिखता है कि सुसमाचार का धन मिट्टी के बर्तनों में है। ये सुसमाचार का वचन रूपी बेशकीमती धन मानव रूपी मिट्टी से बने बर्तन में रखा है कि मनुष्यों के द्वारा ही उसकी आशीष पूरे संसार में पहुंचने पाए। इन्हीं मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा पूरे जगत के अंधकार में ज्योति के रूप में चमके। इस उद्धार सेवकाई से वे संसार के पापी और जरूरतमंद लोगों को प्रभु यीशु के क्रूस की ओर लाएं, जो उन्हें पाप से छुटकारा और सारी वस्तुएं देता है जिनकी उन्हें जरूरत है। और इन सब कामों के द्वारा से केवल एक सर्वोच्च परमेश्वर की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, जो सर्वोपरि है और पूरी कायनात में एक ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह का ये उद्देश्य था कि उसके स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद भी उसके चेले उसके प्रचार कार्य को जारी रखें जो उसने प्रारंभ किया था। क्या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जो अंधकार में बैठा है, उसे सुसमाचार की रोशनी में लाने के लिए अपनी विशेष रुचि नहीं दिखाएगा? कुछ लोग हैं जो इस काम को पृथ्वी के छोर तक पहुंचाने में अपनी इच्छा से लगे हुए हैं। वे वचन की रोशनी हर एक व्यक्ति को देना चाहते हैं, किंतु परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो खुद सच्चाई से प्रेम करता है, उसके खातिर सच्चाई को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करे। यदि हम सुसमाचार फैलाने के काम को अपनी इच्छा से करने के लिए चाहे, उसके लिए कैसा भी बलिदान देने के लिए तैयार है, ताकि जो आत्माएं मरने पर हैं उन्हें बचाया जा सके। यदि हम ये नहीं करते हैं तो हम कैसे इस योग्य ठहराए जाएंगे कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें?
परमेश्वर अपनी समझ से उन लोगों को आपस में मिलाता है जो सच्चाई की खोज में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि वे सत्य जानते हैं। ये सब परमेश्वर की योजना है कि जिन्हें सत्य की ज्योति प्राप्त हो गई है, वे उन लोगों को बांटे जो अभी भी सत्य से अनजान हैं और अंधकार में हैं। मानवता, जिसे सब तरह की भरपूरी जो ज्ञान / बुद्धि ईश्वर के सर्वोच्च भंडार से मिली है, उसे ही प्रचार काम करने के लिए ठहराया है। एक कार्यशील साधन जिसके द्वारा सुसमाचार की जीवन बदल देने वाली शक्ति लोगों के मन और हृदयों को बदल कर रख देती है। परमेश्वर हमारी सहायता के बिना भी लोगों को बचाने और पापियों को पाप से छुटकारा देने का काम कर सकता है, किंतु केवल इसलिए कि वो चाहता है कि हम मनुष्यों में मसीह का चरित्र, उसके भलाई के काम करने की आदत हों, इसलिए हम उसके इस काम को मिलकर करें। मसीह हर एक आत्मा के बचाए जाने पर खुश होता है, हम भी उस खुशी में शामिल हों। वो खुशी जो यीशु ने अपनी जान देकर प्राप्त की, आत्माओं को बचाने की खुशी। हम न केवल उसकी खुशी उसके बलिदान में, बल्कि उसके उद्धार दिलाने के काम में भागीदार हों। उसके राज्य के प्रतिनिधि होने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को नहीं चुनता जो कभी पाप में गिरे ही नहीं। वो उन मनुष्यों को चुनता है जिनमें बुरे लोगों को बुराई से छुड़ाकर भलाई और सच्चाई का मार्ग दिखाने का जज्बा हो। मसीह यीशु इसीलिए संसार में मानव रूप लेकर आए ताकि वो मनुष्यों तक पहुंच सकें, उनकी कमजोरियों को जानें और उनको दूर करें। स्वर्गीय को मानवीय रूप लेना अवश्य था, क्योंकि दोनों रूप संसार को उद्धार दिलाने के लिए जरूरी थे। स्वर्गीय को सांसारिक होना अवश्य था ताकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बातचीत का सिलसिला जारी रहे, और इसीलिए मसीह का मानवीय रूप मनुष्य की पहुंच परमेश्वर पिता तक होने का जरिया है। यीशु हमारा मध्यस्थ है। बड़ी उत्सुकता से स्वर्गदूत हमारे सहयोग की प्रतीक्षा करते हैं कि कब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बातचीत करे, उसे सच्चाई बताए, क्योंकि जब हम यीशु को पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तब स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती है। स्वर्गदूत परमेश्वर की प्रशंसा में खुशी से झूम उठते हैं ताकि वे हमारी आवाज से आवाज मिलाकर परमेश्वर के प्रेम को दर्शा सकें। हमें परमेश्वर के साथ उसके मजदूर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपना काम बिना मानवीय सहयोग के पूरा नहीं करेगा। ये मनुष्यों का ही काम है कि इस काम को पूरा करने की ठान लें। व्यक्तिगत बुलाहट। एक सर्वश्रेष्ठ काम हरेक मसीही को करने के लिए सौंपा गया है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक उसकी दाख की बारी में काम करे। जो काम तुम्हें सौंपा गया है उसे पूरा करने की ठान लो और पूरी वफादारी से करो। यदि तुम में से प्रत्येक एक सशक्त एवं सक्रिय मिशनरी होता तो अब तक ये सुसमाचार सभी राष्ट्रों, जाति, लोगों तक पहुंच चुका होता। प्रत्येक सच्चा शिष्य जो परमेश्वर के राज्य में जन्मा है एक मिशनरी है। वो जो जीवन का जल पीता है उसमें जीवन का स्रोत फूट पड़ता है, अनंत जीवन पाने वाला जीवन देने वाला बन जाता है। प्रभु यीशु का अनुग्रह किसी व्यक्ति के जीवन में रेगिस्तान में बहने वाले झरने के समान है, ताजे पानी का भंडार है जो मृत्यु को पाने वालों, नाश हो जाने वालों को जीवन का जल पिलाने को उत्सुक है। परमेश्वर हरेक उस व्यक्ति को जिसे सच्चाई का ज्ञान एवं उसमें रुचि रखने वाला है से उम्मीद रखता है कि वो उसका कार्य करें। सभी बाहर विदेशों में जाकर मिशनरी का काम नहीं कर सकते, किंतु सभी अपने घरों में और आस पड़ोस में प्रभु का सुसमाचार प्रचार एवं उसकी गवाही देने का काम कर ही सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस समय स्वर्गीय सिंहासन से कुछ कदम की दूरी पर ही थे जब उन्होंने अपने चेलों को ये काम सौंपा। उन्होंने उन सभी से जो प्रभु के नाम में विश्वास रखते हैं उनसे कहा, जाओ संसार के कोने कोने में हरेक को समाचार सुनाओ। प्रभु का आत्मा हमेशा उनके साथ रहता था। जो प्रभु यीशु के अनुयायी हैं उनके जीवन का मुख्य काम लोगों की आत्माएं बचाना है। हम इस संसार के ऋणी कर्जदार हैं, क्योंकि जो अनुग्रह परमेश्वर ने इस जगत पर किया उसकी ज्योति हम पर चमकी है, और परमेश्वर की सुंदरता, सामर्थ और सच्चाई जो हमें मिली है। सभी जगह यह देखा गया है कि किसी संस्था या समिति को सौंपा गया काम आखिरकार व्यक्ति विशेष के भरोसे छोड़ दिया जाता है। मानवीय बुद्धि सभी का समायोजन करने, केंद्रित करने, बड़े बड़े गिरजाघर बनाने तथा संस्थाएं बनाने जैसे कार्य करने में इस्तेमाल की जाती है। करोड़ों लोग अपनी भलाई व फायदे के काम कुछ संस्थाओं और संगठनों को सौंप देते हैं। वे स्वयं को संसार से विरक्त बताते हैं और उनके हृदय भी संवेदनहीन हो जाते हैं। वे अपने आप में ही खोए रहते हैं और उन पर कोई वस्तु प्रभाव नहीं डालती। ऐसे लोगों का प्रेम परमेश्वर व मनुष्य दोनों के लिए मर सा जाता है। वे किसी से प्रेम नहीं रखते। यीशु अपने शिष्यों को एक व्यक्तिगत कार्य सौंपता है, एक ऐसा काम जो एक प्रतिनिधि नहीं कर सकता। रोगियों और दीनों की सेवा, खोए हुओं तक सुसमाचार पहुंचाना आदि कार्य केवल समिति और बड़े बड़े दानवीर संगठनों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। इस कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत प्रयास, स्वयं का बलिदान ही की जरूरत है, तभी यह काम सफल होगा। हरेक वह व्यक्ति जिसे वह स्वर्गीय उजाला प्राप्त हुआ है, उसे ही अन्य लोगों के राह की ज्योति बनना है जो इस राह से अनजान है। प्रत्येक को अपना अपना काम सौंपा गया है, अतः कोई अन्य उसके स्थान पर काम नहीं कर सकता। हरेक के पास एक एक के महत्व का अद्भुत काम दिया गया है, जिसे वह ना तो नकार सकता है और न ही छोड़ सकता है, क्योंकि इस काम का पूरा होना कुछ लोगों के जीवन में खुशियां लाना और पूरा न होना उस एक के लिए शोक होता है, क्योंकि उसके लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दी। हम सभी को प्रभु के साथ उसके सेवक होना चाहिए। कोई आलसी उसके सेवकों में गिना नहीं जाएगा। कलीसिया के सदस्यों को स्वयं यह समझना होगा कि जीवन और बहुतायत का जीवन जो कलीसिया को प्रभावित करेगा, वह है उनके प्रत्येक के द्वारा किया गया कार्य। हरेक आत्मा जिसे यीशु ने छुड़ाया है, बुलाई गई है कि वह खोई हुई आत्मा को बचाने का काम करें। यह कार्य इज़राइल में नहीं किया गया। क्या आज भी यह काम उन लोगों के द्वारा ठुकराया नहीं जा रहा जो अपने आप को सच्चे मसीह के चेले कहते हैं? हरेक के करने के लिए कुछ न कुछ काम अवश्य है। हरेक वह व्यक्ति जो सच्चाई में विश्वास करता है, उसे हर स्थान व हर मौके पर अपने आप को सामने लाना है, ये कहते हुए, हां मैं यहां हूं, मुझे भेज। यशाया 6:8। ये हर मसीह के लिए सुअवसर है। न केवल वह प्रभु की आमद की प्रतीक्षा करे, किंतु उसके शीघ्र आमद के लिए शीघ्रता पूर्वक वचन सारे संसार में फैलाने का काम करें। वह जो परमेश्वर का पुत्र बन जाता है, वह आप ही उस जंजीर की एक कड़ी साबित होता है जो संसार को बचाने के लिए आगे बढ़ने हेतु छोड़ दी जाती है। वह प्रभु के साथ उसके अनुग्रह की योजना में एक होकर उस खोई हुई आत्मा को खोजने निकल पड़ता है जो खो गई है और मृत्यु के कगार पर है। सभी व्यक्तियों को ढूंढने पर कोई काम जरूर मिल जाता है। किसी को यह सोचने की जरूरत नहीं कि उनके लायक कोई काम प्रभु के पास नहीं है। प्रभु हरेक को उसकी योग्यता के अनुसार काम करने को बुलाता है। उसे पता है कौन व्यक्ति क्या काम बेहतरी से कर सकता है। वे जो प्रभु के साथ बांधी गई वाचा में शामिल हैं, वे उसके उस महान व बड़े काम में, अर्थात जीवन बचाने के काम में बंधे हुए हैं। कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत है, उतनी ही बड़ी कार्य योजना है कि हर एक पवित्र किया गया मन सेवक के समान काम करने को एक अद्भुत स्वर्गीय शक्ति के साथ निकल पड़ने को आतुर जो जाता है। मनुष्य का जीवन परमेश्वर के हाथ में है। उसे वह अपनी महिमा और अनुग्रह से भरे कामों को पूरा करने में काम में लाता है। हरेक को अपना अपना कर्तव्य करना है। उसे उसके अनुसार वचन की रोशनी दी गई है, समयानुसार उसकी जरूरतों को प्रदत्त किया गया है, और ये सब उसके लिए पर्याप्त है कि वह परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने में समर्थ हो। एक लंबे समय से परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहा है कि सेवा करने वाली आत्मा संपूर्ण कलीसिया पर अधिकार कर ले, जिससे कलीसिया के सारे लोग अपनी अपनी योग्यता अनुसार काम करने लगें। जब प्रभु यीशु ने 12 को और बाद में 70 लोगों को परमेश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए भेजा, वो उन्हें सिखा रहा था कि काम का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है। उसके सब कामों के द्वारा वो उन्हें प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से मेहनत करने की ट्रेनिंग, साथ ही साथ सदस्यों की बढ़ती होने पर सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का काम करें। इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी केवल अभिषिक्त दासों के कांधों पर ही नहीं है। हर एक व्यक्ति जिसने मसीह को पा लिया है, मसीह की ओर से बुलाया गया है कि अपने साथी को उद्धार का मार्ग दिखाए। सच्ची कलीसिया का चरित्र व आचरण इस बात से नहीं आंका जाता कि उसने कितने बड़े बड़े काम किए, ना ही इस बात से कि चर्च की किताब में कितने नाम दर्ज है, बल्कि इस बात से कि वो वास्तव में अपने प्रभु के लिए क्या कर रही है, उन संख्याओं से कि कुल कितने वफादार कलीसिया में लाए गए हैं। व्यक्तिगत रुचि, काम करने की चाहत व पुरजोर कोशिश ही प्रभु येशु के इस काम की परिपूर्णता में कारगर सिद्ध होगी, केवल उपदेशों और बातों से नहीं। जहां कहीं भी चर्च स्थापित हुए हैं, उन सब सदस्यों को इस मिशनरी कार्य को करने में जुट जाना चाहिए। उन्हें अपने पड़ोसियों की पारिवारिक एवं आत्मिक स्थिति के बारे में जानकर उन्हें सच्चाई सिखाना व बताना शुरू कर देना चाहिए। कलीसिया के सभी सदस्यों को विदेशों में सेवा करने के लिए नहीं बुलाया गया है, किंतु हरेक को इस महान व बड़े काम को पूरा करने के लिए उनकी सामर्थ्य अनुसार जगत में ज्योति फैलाने का काम दिया गया है। प्रभु येशु का सुसमाचार शीघ्रता से उतावली से फैलने वाला है। प्रभु के दिन कोई भी ये कहकर बच नहीं पाएगा कि मैं अपनी स्वार्थपूर्ण रुचियों के कारण चुप रहा और एक को भी सुसमाचार नहीं सुनाया। ये काम हर एक के दिमाग, मन एवं हाथ में है। काम भी विभिन्न प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा ग्रहण योग्य एवं विभिन्न प्रकार की योग्यता से पूर्ण है। प्रभु ने तुम्हें धार्मिक सच्चाई से अवगत कराया है। प्रभु स्वयं अपनी कलीसिया के सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से साथ में बना रहता है, और वो जीवन का जल का स्रोत है जो उमड़ता रहता है, ताकि हरेक उस जीवन के जल से पिए। यदि आप इस काम को नहीं करते तो प्रभु के सम्मुख दोषी ठहराए जाएंगे। अतः आप हर संभव प्रयत्न करें कि ये जीवन जल जितना अधिक हो सके उतना दूसरों तक पहुंचाएं। मसीही होने के बाद भी हम सुसमाचार प्रचार का 1/20 वा हिस्सा काम भी आत्माओं को बचाने में नहीं कर रहे हैं। ये सारे संसार के लिए चुनौती है। हर एक मसीही एक वफादार मार्गदर्शक, दूसरों के लिए वफादारी का नमूना, क्रूस उठाकर चलने वाला, सटीक व शक्तिशाली कार्य करने वाला, सच्चाई बताने में दृढ़ संकल्प एवं अडिग तथा कठोर परिश्रमी एवं समय आने पर अपना सब कुछ बलिदान कर प्रभु के काम को आगे बढ़ाना है। जैसे ही उस व्यक्ति को जिसे सच्चाई की रोशनी मिलती है, लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ठीक इज़राइल के भविष्यवक्ता के समान जिसे ये शब्द सुनाई दिया था, मनुष्य के पुत्र, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का रखवाला इसलिए ठहराया है कि तू मेरे मुख से यह वचन सुनकर चेतावनी के शब्द उन तक पहुंचाए। हर एक वह व्यक्ति जिसे प्रभु के अनुग्रह को पाने का अवसर मिलता है, उसे वह दूसरों तक अनुग्रह पहुंचाने के लिए नियुक्त कर देता है। जो जिस भी स्थान पर हो, वह कहे, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। सेवकाई करने वालों के लिए वचन, मिशनरी प्रवर्तक, मसीही चिकित्सक, प्रत्येक मसीही, चाहे वो व्यापारी हो या किसान, व्यवसायी व्यक्ति या मैकेनिक, जिम्मेदारी तो सभी की बनती है। ये हम सब का काम है कि दुनिया के सभी लोगों को उद्धार पाने का सुसमाचार प्राप्त हो, उसे बताया जाए कि हर एक को उद्धार की योजना में शामिल किया गया है। हमारा जो भी कार्य क्षेत्र हो, जो कार्य हम करें, आखिरकार लोगों को प्रभु का सुसमाचार अवश्य पहुंचाए। जब घर के मालिक ने अपने सेवकों को बुलाया तो सभी को उनका कार्य सौंपा। परमेश्वर के परिवार के सभी सदस्य इस कार्य को करने में शामिल हैं जो प्रभु की हर एक आशीष के हकदार हैं। संगठित मसीही शक्ति।
प्रभु में विश्वासी भाइयों और बहनों, क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न उठा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यदि आप परमेश्वर के बेटे व बेटियां हैं तो आप जरूर अपने भाई के रखवाले हैं। प्रभु कलीसिया को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं जिन्हें आप अनंत मृत्यु से बचा सकते थे, पर आपने सुसमाचार का प्रचार न कर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। एक उद्धारकर्ता ने अपना बेशकीमती जीवन इसलिए कुर्बान कर दिया कि एक ऐसी कलीसिया स्थापित हो जो दुखित, प्रताड़ित एवं परीक्षाओं में फंसे लोग हैं उन्हें आनंद का सुसमाचार सुनाए। विश्वासियों का एक ऐसा समूह, चाहे वह गरीब, अशिक्षित और अनजान ही क्यों ना हो, तब भी मसीह में वे एक होकर घर घर जाकर, आस पड़ोस में, यहां तक कि दूर दराज के स्थानों में जाकर प्रचार करें, जिनका परिणाम अधिक से अधिक लोगों को अनंत जीवन तक पहुंचने में होगा। कलीसिया चाहे कमजोर और दोषपूर्ण ही क्यों ना हो, उस पर प्रभु की विशेष आशीषें एक विशेष अर्थ में दी जाती हैं। उसकी सर्वश्रेष्ठ भलाई व शुभकामना उसे शक्तिशाली बनाती है। यह अनुग्रह से भरपूर भंडार है जिसमें वह हृदयों को बदल देने की सामर्थ्य को दर्शाता एवं खुश होता है। किसी न किसी को तो प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए काम को पूरा करना ही है, किसी न किसी को उस काम को आगे ले जाना है जो उसने स्वयं इस धरती पर शुरू किया है, और कलीसिया को इसी उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है कि वह इस सुअवसर का फायदा उठाए, कार्य को प्रगति प्रदान करें। फिर कलीसिया के सदस्यों ने इस उत्तरदायित्व को स्वीकार क्यों नहीं किया है? परमेश्वर कलीसिया को सौंपा गया काम करने को बुलाता है ताकि अपने अपने कार्य क्षेत्र में सच्चे हृदय परिवर्तन के कार्य को सर्वोपरि स्तर पर रखें व ऐसे प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों को नए कार्य क्षेत्र में भेजें ताकि कार्य शीघ्रतापूर्वक पूर्ण हो। थिस्सलुनीके के विश्वासी सच्चे मिशनरी थे जिनके द्वारा सच्चाई को बताकर कई हृदयों को जीत लिया गया और अनेक लोगों की विश्वासियों की भीड़ में शामिल किया गया। बारहों के अभिषिक्त किए जाने के समय से ही कलीसिया के संगठित होने का पहला कदम उठा लिया गया था ताकि मसीह के स्वर्ग को जाने के पश्चात उसका यह कार्य पृथ्वी पर जारी रखा जाए। परमेश्वर की कलीसिया पवित्र लोगों का स्थान है जो विभिन्न भेंटों से तथा पवित्र आत्मा से भरपूर है। कलीसिया के सदस्यों की खुशी अन्य लोगों की मदद करने व आशीष देने में होती है। क्या ही अद्भुत है यह काम जिसे परमेश्वर ने स्वयं रचा एवं पूरा करने के लिए अपने लोगों का इस्तेमाल करता है जिससे उसके नाम की महिमा हो। हमारा काम बड़ी सहजता से परमेश्वर के वचन पर आधारित है। एक मसीही को मसीही से एक होना है, कलीसिया से कलीसिया को, मानवीय प्रयास को स्वर्गीय अगुवाई से तथा सभी को पूरी रीति से पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर तथा एकजुट होकर प्रभु के अनुग्रह का सुसमाचार संसार के लोगों को देना है। हमारी कलीसियाओं को साथ मिलकर कठोर भूमि को आध्यात्मिक रूप से उपजाऊ बनाना है, इस आशा के साथ कि समय आने पर भरपूर फसल काटी जा सके। मिट्टी कठोर है किंतु उस पर हल चलाकर उसे ढीली व भुरभुरी कर देना है कि उसमें धार्मिकता का बीज बोया जा सके। हे परमेश्वर के प्रिय शिक्षकों, रुको नहीं। यदि आवश्यक हो तो अपने साथ और लोगों को वचन की शिक्षा दो ताकि वे भी वही काम करें जो तुमने उन्हें करना सिखाया है। कलीसिया परमेश्वर द्वारा नियुक्त वह संस्था है जिसे हर एक मनुष्य के उद्धार के लिए स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना परमेश्वर के वचन और सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया में फैलाने का मानव सेवा रूपी कार्य करने के लिए किया गया है। प्रारंभ से ही परमेश्वर की यह योजना थी कि कलीसिया व उसके लोगों के द्वारा सभी को परमेश्वर की महानता एवं परिपूर्णता प्रकट की जाए। कलीसिया के सदस्यों को, जिन्हें प्रभु ने मृत्यु के अंधकार से निकालकर अनंत जीवन की ज्योति में ले आया है, वे लोग ही उसकी अद्भुत महिमा अन्य लोगों तक पहुंचाएं। कोई भी कलीसिया यह न सोचे कि लोगों को सुसमाचार बताकर प्रभावित करना बहुत छोटी बात है, विशेषकर वर्तमान समय में। प्रचार काम के लिए निकल पड़ो भाइयों। ये केवल बड़ी बड़ी सभाएं, कैंप, मीटिंग्स या प्रचार सभाएं ही नहीं जो लोगों की समझ के अनुसार प्रभु का ज्यादा प्रचार प्रसार करती है, किंतु एक विश्वासी का दूसरे विश्वासी के प्रति प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, उसे मुकुट दिलाएगा, साथ ही भरपूर आशीषों के साथ उसे इस काम का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी प्राप्त होगा। करो जो भी तुम चाहो, क्योंकि परमेश्वर इस काम में तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी ताकत व योग्यता को बढ़ाएगा। गवाहियां। हम यीशु मसीह के गवाह हैं और हम अपना कीमती समय तथा ध्यान सांसारिक रुचियों या अन्य कामों को करने में व्यर्थ नहीं गवाएंगे। तुम मेरे गवाह हो, प्रभु ने कहा। मैंने तुम्हें बता दिया है, मैं पिता के पास पहुंच गया हूं और मैंने तुम्हें पिता तक पहुंचने का मार्ग भी बता दिया है। ये सब पहले से तुम्हें पता है कि यहोवा मैं हूं। कोई अन्य परमेश्वर तुम्हारे बीच में था ही नहीं, अतः प्रारंभ से ही तुम मेरे गवाह हो। मैंने प्रभु होने के नाते तुम्हें अपनी धार्मिकता में बुलाया है। मैं तुम्हारा हाथ थामे रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और सभी लोगों के लिए एक वाचा में बांधूंगा, अन्य जातियों के लिए रोशनी ताकि उनकी आंखें खुले और वे देख सकें, कैदियों को शैतान की कैद से छुड़ाएं और उन्हें भी जो कैद से बाहर तो हैं
किंतु अंधकार में बैठे हैं। दुनिया भर के लोग झूठे देवी देवताओं की पूजा करने लगे हैं। उन सभी को उन झूठे देवी देवताओं की पूजा से हटाकर ऐसी तरफ मोड़ना है जो उन सभी के लिए बेहतर होगा। वह सिर्फ मुंह से कहकर नहीं, किंतु वास्तव में सच्चे परमेश्वर की ओर मन से फिरें। परमेश्वर भला है, ये बात उन सभी को बताई जाए। तुम मेरे गवाह हो, परमेश्वर ने कहा कि मैं ही यहोवा हूं। वे सब जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, उन्हें अपने पृष्ठवी पर के जीवन में प्रभु यीशु को सबसे आगे रखना है। हर एक काम में यीशु का नाम व उसकी अगुवाई होना चाहिए। उससे ये होगा कि वे प्रभु यीशु के समाचार फैलाने वाले उसके गवाह ठहराए जाएं। उन्हें सीधी व सरल निर्णायक गवाही को सभी बुरे कामों के करने वाले गुनहगारों को परमेश्वर के मेमने की ओर लाना है, जो लोगों के पापों को उठा ले जाता है। शिष्यों को यीशु की गवाही देने के लिए निकल जाना था, ताकि जो कुछ उन्होंने उसके बारे में सुना और देखा था वह लोगों को बता सकें। उनका ये गवाही का काम सबसे महत्वपूर्ण था कि वह पहले मसीह के बारे में जाने, तब खुद मसीह के करीब लाए जाए। उन्हें मसीही के साथ मिलकर मनुष्यों को बचाने का काम करना था। पवित्र गुरु प्रभु यीशु कहता है, केवल मेरी आत्मा ही एक पापी को सिखाने के योग्य है। बाहरी प्रयास केवल कुछ समय के लिए लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। मैं ही सत्य को उसके आत्मा में डालूंगा और मनुष्य मेरे गवाह हो जाएंगे। वे पूरे जगत में मेरे दावों को मनुष्य के समय, उसके पैसे, उसकी बुद्धि के द्वारा गवाही दे देकर प्रचार करेंगे। उसके भरोसे मंद होने की स्वीकृति हमें स्वर्गीय माध्यमों के द्वारा चुना हुआ साबित करती है, जिससे हम सारे जगत के सामने उसके अद्भुत जीवन की कहानी सुना सकें। उसका अनुग्रह जैसा प्राचीन समय के पवित्र लोगों द्वारा उस समय के लोगों को बताया गया था, ठीक उसी प्रकार हमें भी प्रभु के अनुग्रह के बारे में वर्तमान में लोगों को बताना है। किंतु इस काम को ज्यादा प्रभावशाली तरीके से करने में यदि हम अपने स्वयं पर हुए अनुग्रह का बखान करेंगे तो अधिक प्रभाव पड़ेगा। हम सभी परमेश्वर के गवाह हैं, जैसा कि उसकी गवाही देकर हम स्वयं ही ये बताते हैं कि हम में एक शक्ति काम करती है जो परमेश्वर की ओर से है। हर एक का व्यक्तिगत जीवन अन्य लोगों से हटकर अपनी स्वयं की विशेषताएं लिए होता है, अतः अपना अनुभव भी अन्य लोगों से भिन्न होता है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रशंसा हमारे द्वारा नित्य उसके आंगनों में पहुंचे, जिसमें हमारे अपने शब्द, धन्यवाद, महिमा एवं प्रार्थनाएं हों। ये सभी बेशकीमती स्वीकृतियां प्रभु की अद्भुत प्रशंसा, जो उसका अनुग्रह है, के साथ प्रचारक का मसीह के समान आचरण हो तो एक ऐसी बेजोड़ शक्ति सहयोग करती है कि उद्धार पाने वाला व्यक्ति उस शक्ति को नकार ही नहीं सकता।
परमेश्वर अपनी इच्छा के बारे में तथा उसकी अद्भुत महिमा अविश्वासी लोगों के जगत में तब तक नहीं दिखला सकता है जब तक कि उसके गवाह पूरी पृथ्वी पर न फैले हों और उनके द्वारा उसकी महिमा का प्रचार नहीं हुआ हो। ये उसकी योजना है कि वे जिन्हें उसने इस महान उद्धार में मसीह यीशु के प्रचारक होने व उद्धार पाने में भागीदार बनाया है, वे रोशनी की एक मिसाल के रूप में पूरे संसार के लोगों के लिए एक चिन्ह, जीवित गवाह व प्रेरित सभी के बीच जाने माने लोग, जिनका विश्वास और कार्य इस बात से सिद्ध होता है कि वे आने वाले प्रभु के काफी करीब हैं, और वे ये दर्शाते हैं कि उन्होंने पवित्र अनुग्रह परमेश्वर से व्यर्थ में नहीं पाया है। सभी लोगों को चिताने की आवश्यकता है कि वे तैयार रहें होने वाले न्याय के लिए। प्रभु यीशु के चेलों ने जब उसके पवित्र निष्कलंक जीवन पर मनन किया, उसे समझा, तब उन्होंने जाना कि मसीही प्रचार के लिए किसी भी प्रकार का परिश्रम कठिन नहीं, किसी भी प्रकार का त्याग महान नहीं। यदि वे उस निष्कलंक पवित्र परमेश्वर का बखान, एक दयालु प्रेमी परमेश्वर की गवाही की जिम्मेदारी जीवन भर निभाने का प्रण करें। ओ, काश के हम उसके साथ बीते हुए 3 वर्षों को और अधिक रूप से जी पाते, तो और कितनी अलग तरह से व्यवहार करते। उनकी यह बड़ी कामना है कि अपने गुरु से फिर से मिले, तो बड़ी उत्सुकता से उसे बता सकेंगे कि वे उससे कितना अधिक प्रेम करते हैं। चेले सोचते हैं कि वे उसे ये भी बताते कि वे कितने दुखी हुए जब उनके एक शब्द और एक अविश्वास के काम से, जो उन्होंने किया, उससे प्रभु को ठेस पहुंचाई। सिर्फ एक विचार उन्हें सांत्वना देता है
कि प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया और अब उन्होंने ठान लिया कि जहां तक संभव हो वे अपने अविश्वास के प्रति पछताएंगे और बड़ी बहादुरी से प्रभु के नाम की गवाही पूरे जगत में फैलाएंगे। दिकापुलिस के इलाके में सर्वप्रथम प्रभु यीशु के द्वारा दो भूतग्रस्त पुरुष जिन्हें यीशु ने चंगा किया था मिशनरी के रूप में भेजे गए थे ताकि वे सुसमाचार का प्रचार कर सकें। केवल कुछ क्षणों के लिए ही इन पुरुषों को मसीह यीशु की शिक्षाओं को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसके पहले प्रभु यीशु के वचन कभी इनके कानों में नहीं पड़े थे। ये शिष्यों के समान लोगों को सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते थे क्योंकि शिष्य तो प्रभु के साथ सदा रहा करते थे, किंतु इन भूतग्रस्त पुरुषों ने प्रभु से चंगाई पाई थी और स्वयं जीता जागता उदाहरण थे लोगों को यह बताने के लिए कि यीशु ही मसीह है। वे बता सकते थे जो उन्होंने यीशु के बारे में जाना था, जो खुद उन्होंने देखा था, सुना था और महसूस किया था कि वास्तव में प्रभु सामर्थी है। ये काम कोई भी वह मनुष्य कर सकता है जिसके हृदय को यीशु के अनुग्रह का स्पर्श हुआ हो। यूहन्ना प्रभु का सबसे प्रिय शिष्य लिखता है, वह जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, हमने जिसका भरोसा किया, उसकी ओर ताका और उसने हमारे हाथों को थामा, वह जीवित वचन था, वही है जिसे हमने देखा, वह उसके वचनों को सुना, उसी की महिमा का बखान करते हैं। प्रभु के गवाह होने के लिए हमें लोगों को बताना है जो हम उसके बारे में जानते हैं। हमने स्वयं ने क्या क्या आश्चर्य कर्म देखे हैं, सुने हैं और महसूस किए हैं। यदि हम प्रभु का अनुकरण कदम कदम पर करते हैं, हमारे पास अवश्य कुछ तो होगा लोगों को कहने या बताने के लिए कि प्रभु ने हमारी किस प्रकार हर बार अगुवाई की। हम ये बता सकते हैं कि हमने उसके वायदों को जांचा और यह पाया कि उसका हर एक वायदा सच्चा है। हम उसकी गवाही यह कहकर दे सकते हैं कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। यही वह गवाही है जिसके लिए यीशु हमें बुलाता है और आज संसार को इसी की जरूरत है, जबकि पूरा जगत नाश होने पर है। रोशनी पुंज और आशीष। हमें वह पूर्ण समर्पित स्रोत बन जाना चाहिए जिनके द्वारा स्वर्गीय जीवन दूसरों तक पहुंचाया जा सके। पवित्र आत्मा सभी के लिए कार्य करेगा तथा संपूर्ण कलीसिया को बढ़ाता, पवित्र तथा पक्का विश्वास करने वाला बना देता है।
प्रत्येक अनुयायी को यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने का काम एक मिशनरी के रूप में करना है। अपने परिवार में, पड़ोस में, गांव या शहर जिसमें वो रहता है, वे सब जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन समर्पित किया है, वे सब प्रभु के प्रकाश को फैलाने वाले हैं। प्रभु उन्हें अपनी धार्मिकता के अगुवों के रूप में लोगों को बताने के लिए इस्तेमाल करता है कि सच्चाई की रोशनी वही है। प्रभु यीशु के कामों का परिणाम, जैसा वो थका हारा और भूखा कुएं के पास बैठा था, एक आशीष के रूप में उस इलाके में फैल गया। केवल एक आत्मा जिससे उसने सहायता मांगी, वो स्वयं ही उसके बारे में सारे लोगों को बताने के लिए संदेश फैलाने का साधन बन गई और उन्हें प्रभु यीशु उद्धारकर्ता के पास ले आई। ये सारे प्रभु के ही कार्य करने का तरीका है जिनसे पृथ्वी पर प्रभु के लोगों में वर्षद हुई। अपनी रोशनी चमकाओं और दूसरे भी रोशन हों। कई लोगों का ये विचार है कि वे केवल मसीह के प्रति ही उनके रोशनी एवं अनुभवों के लिए जिम्मेदार है और पृथ्वी भर में उसके पीछे चलने वाले केवल वे ही प्रमाणित शिष्य हैं। प्रभु यीशु पापियों का मित्र है, उसका हृदय उनके दुखों से खेदित है, उसको स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का संपूर्ण अधिकार है, किंतु वो इस बात का आदर करता है कि उसका अभिषेक मानव जाति को समझाने, बताने और उसका उद्धार करने के लिए किया गया है। वो हर पापी को कलीसिया में आने के लिए अगुवाई करता है, जिसे उसने पृथ्वी के लोगों के लिए जीवन की रोशनी का स्रोत ठहराया है। प्रारंभिक कलीसिया को प्रारंभ में काफी बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार का काम करना पड़ा था, क्योंकि जहां कहीं वे जाते थे वहीं वे लोग जो ईमानदारी से प्रभु की सेवा में लग जाना चाहते थे उनके द्वारा रोशनी और आशीषों के केंद्र स्थापित कर आगे बढ़ जाते थे। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी पृथ्वी के दूर दराज इलाकों को भी भेद देती है, एक एक कोना रोशनी से भर जाता है।
वैसे ही परमेश्वर भी अपनी प्रजा के लोग जो दुनिया के कोने कोने में हैं उन तक सुसमाचार की रोशनी पहुंचाने के लिए योजना बनाता है। यदि प्रभु में स्थापित हर एक कलीसिया परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में तन मन से जुड़ जाती तो अब तक हर एक जो संसार के अंधकार में मृत्यु के चंगुल में है उसे जीवन की अनंत जीवन की रोशनी मिल गई होती। ये हर एक प्राणी के लिए विशेष सम्मान की बात है कि जीवित रहते हुए वे प्रभु और लोगों के बीच एक कड़ी, एक मध्यस्थ का काम करें, जो प्रभु उनसे चाहता है वो उन तक पहुंचा सकें, और वो है अनुग्रह का खजाना, प्रभु यीशु मसीह, जो बड़ी आसानी से मिलने वाला धन है। ये कोई ज्यादा नहीं कि प्रभु चाहता है कि हम उसके मध्यस्थ बने और सारे जगत के सामने उसकी पवित्र आत्मा और निष्कलंक चरित्र प्रस्तुत करें। ये भी कुछ अधिक नहीं कि संसार को मनुष्यों के द्वारा ही एक सच्चे उद्धारकर्ता के अद्भुत प्रेम के बारे में बताया और दिखाया जाए। संपूर्ण स्वर्ग और उसकी शक्तियां ऐसे स्रोतों, लोगों की प्रतीक्षा कर रही हैं जो पृथ्वी के लोगों पर पवित्र आत्मा का तेल उड़ेलने तथा उनके जीवन खुशियों और आशीषों से भर देने के लिए अग्रसर होते हैं। परमेश्वर के भवन की प्रशंसा उसके सदस्यों की पवित्रता पर निर्भर करती है, क्योंकि उसी में प्रभु यीशु की सामर्थ पाई जाती है। परमेश्वर के वफादार और कर्मठ बेटे और बेटियों का प्रभाव चाहे कमतर ही गिना जाए, किंतु वो छोटा सा काम हमेशा याद रखा जाएगा और पुरस्कार पाने के दिन उस काम का उल्लेख किया जाएगा। एक सच्चे मसीही का प्रकाश पूरी पवित्रता के साथ दृढ़ता से चमकता हुआ, कभी न डिगने वाला विश्वास पूरे जगत को जीवित प्रभु यीशु जो उद्धार करता है की सामर्थ को सिद्ध करेगा। उसके शिष्यों में प्रभु यीशु जीवन के जल का सोता बन उछल पड़ेगा, जो हरेक को अनंत जीवन प्रदान करता है। यद्यपि संसार उन्हें नहीं जानता, किंतु परमेश्वर ऐसों को जो उसके विशेष लोग होंगे प्रतिष्ठित करेगा। उसके चुने हुए बर्तन, उसके स्रोत, जहां से जीवन की ज्योति एवं जीवन जल संसार के लोगों को प्राप्त होता है। कलीसिया के लोगों, अपनी ज्योति संसार में फैलाओ, अपनी आवाज प्रार्थनाओं में बुलंद करो, उन चंचल मन वाले लोगों को गवाही दो जो इस संसार के अनुसार जीवन जीते हैं। उन लोगों के बीच प्रभु के सुसमाचार का और सच्चाई की उद्घोषणा करो जो वर्तमान समय के लिए आवश्यक है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा प्रभाव व छवि, तुम्हारा समय, ये सब परमेश्वर की ओर से दान हैं, जिनका उपयोग प्रभु यीशु के लिए आत्माओं को जीतने के लिए किया जाना चाहिए। मुझे ये दिखाया गया है कि प्रभु के शिष्य इस पृथ्वी पर इसके प्रतिनिधि हैं, और परमेश्वर चाहता है कि वे इस जगत की ज्योति हों उन लोगों के लिए जो इस संसार के अनैतिक अंधकार में हैं, जो सभी देशों में, शहरों में, कस्बे में, गांवों में पाए जाते हैं। संसार के लिए, स्वर्गदूतों के लिए और मनुष्य के लिए एक अद्भुत चमत्कार। प्रभु के शिष्यों को जगत की ज्योति ठहराया गया है, लेकिन प्रभु उन्हें मजबूर नहीं करता कि वे अपनी ज्योति फैलाने में कठिन परिश्रम करें। वो ये भी नहीं चाहता कि कोई अपने स्वार्थपूर्ण कार्य द्वारा अपने पर भरोसा रखकर सर्वश्रेष्ठ काम कर दिखाने का दिखावा करें। प्रभु चाहता है कि उनका जीवन स्वर्गीय सिद्धांतों से परिपूर्ण हो, और जब वे संसार के लोगों के करीब आते हैं तब वे स्वयं में पाई जाने वाली सच्चाई को उन पर प्रकट करें। उनकी कर्तव्य निष्ठा उनके जीवन में किए गए हर एक काम को रोशन करने में सहायता करेगी। जब शाऊल उसके अनजाने अंधेपन और बदला लेने की भावना से ग्रसित था, उसे प्रभु यीशु की ओर से प्रकाशना मिली जिन्हें वह सता रहा था। वह कलीसिया से सीधा संबंध बातचीत के द्वारा बनाए हुए था, जो संसार के लिए ज्योति था। इस मामले में हनन्या प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही यीशु के प्रचारक होने का भी काम करता है जो पृथ्वी पर है, और उसके बदले में उसका कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। यीशु ख्रीष्ट के स्थान पर हनन्या शाऊल की आंखों को छूता है ताकि उनमें दृष्टि पाई जाए। यीशु के स्थान पर वह उसका हाथ शाऊल के ऊपर रखता है और यीशु के नाम से प्रार्थना करता है। तब शाऊल को पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। सभी कुछ प्रभु के नाम से और उसके अधिकार के अनुसार किया गया। प्रभु यीशु जीवन का जल है और कलीसिया उस जल को लोगों तक पहुंचाने वाली जल धाराएं हैं। पाप ने हर जगह अपने पैर पसारे हैं। मनुष्यों का कट्टर दुश्मन अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर रहा है। वह हर एक चीज को इस तरह व्यवस्थित कर मनुष्यों की बुद्धि को गलतियों का पिटारा बनाकर उन्हें असमंजस में डाल रहा है और इस तरह आत्माओं को विनाश की ओर ले जा रहा है। आज जिन्हें परमेश्वर ने सच्चाई के उसके खजाने को सौंप दिया है, उनका काम है कि वे उन नैतिक अंधकार में पड़ी आत्माओं पर जीवन की ज्योति चमकाएं। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग दुनिया में ज्योति की तरह चमकें। ये काम केवल प्रभु के सेवकों का ही नहीं पर यीशु के हरेक चेले का है। उनकी बातचीत में स्वर्गीय तत्व की छाप होनी चाहिए और जब वे परमेश्वर से बात करते हैं तब उस अनुभव को लोगों के साथ बांटने के लिए उत्साहित होते हैं। शब्दों व कार्यों के द्वारा वे प्रभु के प्रेम को लोगों के हृदय तक पहुंचाते हैं ताकि वे भी प्रभु से प्रेम करने लगे। इस तरह वे एक ऐसी ज्योति होंगे जो पूरे जगत को अपनी सच्चाई की किरणों से रोशन कर देंगे। वे ज्योति व्यर्थ नहीं होगी और ना ही उनसे छीनी जा सकती है। प्रभु के चेले धार्मिकता के साधक, कार्यकर्ता, जीवित चट्टान, ज्योति बिखेरने वाले होने चाहिए जिससे वे स्वर्गदूतों की उपस्थिति को उत्साहित कर सकें। उन्हें ऐसे मध्यस्थ होने की आवश्यकता है जिनमें से सत्य की आत्मा और धार्मिकता धारा की नाई बहती हो। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को स्वर्गीय छवि का सुरक्षा कोष ठहराया है। स्वर्गीय जगत सारे लोगों को ऐसे स्रोत बनाने की प्रतीक्षा कर रहा है जिनमें से होकर अनंत जीवन का तरंग संसार के हर एक प्राणी तक पहुंचे ताकि सभी को बदलने का अवसर मिले और जब वे जीवन को पा लें तब वे भी प्रभु यीशु के अनुग्रह की जल धारा को प्रभु के बाग के उन सूखे रेगिस्तानी हिस्सों में पहुंचा सकें जहां का क्षेत्र सूखाग्रस्त है। हरेक वह व्यक्ति जो परमेश्वर से जुड़ा है प्रभु के सत्य की ज्योति दूसरों को बांटेगा। यदि कोई ऐसा है जिसके पास वह रोशनी नहीं है, इसका अर्थ है वह परमेश्वर से जो ज्योति का स्रोत है जुड़ा नहीं है।
परमेश्वर ने उसके बच्चों को दूसरों तक सत्य को ज्योति पहुंचाने के लिए नियुक्त किया है। यदि वे पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति पाने के बावजूद भी इस काम को करने में नाकाम होते हैं और अनेक आत्माएं पाप के अंधकार में उनकी नाकामी के कारण छूट जाती हैं तो अवश्य है कि पिता इस बात के लिए उन्हें दोषी ठहराएगा। हमें इसीलिए अंधकार से निकालकर अद्भुत ज्योति दी गई है ताकि हम भी प्रभु की प्रशंसा को आगे और आगे बढ़ाते जाएं। वे सभी जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है वो जीवन की ज्योति का स्रोत बन जाता है। परमेश्वर उन्हें अपना मध्यस्थ बनाता है ताकि वे प्रभु की दया रूपी धन को लोगों को बता सकें। हमारा अधिक प्रभाव लोगों पर तब नहीं पड़ता जब हम बोलते हैं, किंतु तब पड़ता है जब उन्हें हमारे जीवन व व्यवहार के बारे में स्वयं देखकर अनुभव होता है कि हम क्या हैं। मनुष्य शायद हमारे सिद्धांतों को मानने से इनकार करें, उन पर बहस करें, यहां तक कि हमारी अपीलों को भी न माने, फिर भी एक ऐसा जीवन जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए दांव पर लग गया है, जो हर तरह का प्रयास करने को तैयार है, उससे लोग जीत नहीं सकते। एक समायोजित जीवन प्रभु की उदारता के गुण से पूर्ण जीवन ही वो शक्ति है जो जगत में कार्य करती है। वे जिनके पास ज्योति तो थी पर उनका प्रकाश लोगों पर उतना प्रभाव नहीं डाल पाया जैसा होना था। ये ज्योति क्या है? ये है परमेश्वर की पवित्रता, भलाई, सत्य, दया, प्रेम। ये सारे गुण परमेश्वर की सत्यता लोगों तक पहुंचाते हैं। अतः ये सारे गुण परमेश्वर के लोगों में होना चाहिए। सुसमाचार प्रचार व्यक्तिगत पवित्रता पर निर्भर करता है जो एक विश्वासी की होना चाहिए। ताकि वो प्रभावशाली हो इसके लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का प्रयोजन पहले ही से कर दिया था कि हर एक आत्मा पूर्ण रूप से अच्छे व भले काम करने के लिए तैयार हो जाए। हर एक आत्मा को अद्भुत ज्योति से ज्योतिमान होना है, उस प्रभु की महिमा का बखान करने के लिए जिसने हमें अंधकार से निकालकर उसकी अद्भुत ज्योति में लाया है। हम सब प्रभु के साथ उसके मजदूर हैं, हां मजदूर जिन्हें प्रभु के जगत रूपी दाख की बारी में ईमानदारी से काम करना है। बहुत सी आत्माओं को बचाया जाना बाकी है, वे जो कलीसिया में हैं, वे जो सबवत स्कूल में भी हैं और हमारे आस पड़ोस में भी पाए जाते हैं। ये काम उन लोगों का है जो अपनी स्वयं की आत्मा को जीवित रखते हैं। यदि वे इस काम में प्रभु यीशु का साथ और सहयोग प्रार्थना व उपवास के द्वारा प्राप्त करते हैं, तब हम देखेंगे कि कलीसिया के द्वारा सत्यता की ज्योति और ज्यादा तेजी से चमकेगी, अपनी सारी बाधाओं को भेदते हुए सारे अंधकार को दूर कर सत्यता की रोशनी फैलेगी। तुम जगत की ज्योति हो। यहूदियों ने सोचा था कि उद्धार का जीवन का लाभ केवल उनके अपने लोगों के लिए है, किंतु प्रभु यीशु ने उन्हें बताया कि उद्धार सूर्य की रोशनी के समान है। ये संपूर्ण जगत के लिए है। वे हृदय जो पवित्र आत्मा के प्रभाव के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, वे ही वे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर की आशीषें दूसरों तक पहुंचती हैं। यदि वे लोग जो परमेश्वर के सेवक हैं पृथ्वी पर से हटा लिए जाएं और यदि परमेश्वर का आत्मा वापस ले लिया जाए, तो जगत में खालीपन और विनाश, जो शैतान के राज्य के फल हैं, ही शेष रह जाएंगे। हालांकि दुष्ट लोग ये नहीं जानते कि वर्तमान जीवन वो जी रहे हैं। वो इस जगत में परमेश्वर के उन लोगों के कारण है जिन्हें वे दबाते और घृणा करते हैं। यदि वे केवल नाम मात्र के मसीह हैं, तो उस नमक के समान हैं जिसका स्वाद जाता रहा है। उनका इस जगत में कोई भला प्रभाव नहीं है। उन दुष्ट लोगों ने प्रभु को जिस प्रकार गलत तरह से दर्शाया है, उसके कारण वे दुनिया के सबसे बुरे अविश्वासी लोग ठहरेंगे। एक स्वर्गीय आदेश पत्र। वो काम जो शिष्यों ने किया, हमें भी करना है। हर एक मसीही को एक मिशनरी होना है, पूरी सहानुभूति और दया के साथ उन लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना है जिन्हें मद की जरूरत है। उन्हें ढूंढना है, स्वार्थ रहित ईमानदारी के साथ उनके दुखों व कष्टों को दूर करना एवं संपूर्ण मानव जाति को सुसमाचार की सत्यता की ज्योति से रोशन करना है। स्वर्गारोहण के पहले यीशु ने उसके चेलों को एक काम सौंपा। उसने उनसे कहा कि उन्हें उसकी इच्छा की सभी को बताना है, जिसमें उसने जगत के लोगों को अनंत जीवन का खजाना उनके नामे वसीहत किया है। प्रारंभिक शिष्यों को दिए गए भरोसे को हर उम्र के विश्वासी में आपस में बौटा। हर एक जिसने सुसमाचार को ग्रहण किया, उसे पवित्र सच्चाई भी दी गई कि वो उसे संसार के बीच बांटे। परमेश्वर के कई वफादार लोगों ने जबरदस्त तरीके से सुसमाचार प्रचार प्रसार, अपने साधनों का इस्तेमाल, प्रभु के नाम को महिमा देने तथा अपने तोड़ों का सही उपयोग प्रभु की सेवकाई में किया। सुसमाचार प्रचार का काम परमेश्वर के राज्य के लिए किया गया सबसे बड़ा एवं कारगर जरिया है। शिष्यों को सभी लोगों की आत्मा बचाने तथा प्रभु की दया पाने के लिए ईमानदारी से आमंत्रित करना है। उन्हें इंतजार नहीं करना है कि वे स्वयं उनके पास आएं, बल्कि उन्हें खुद सुसमाचार लेकर उन तक पहुंचना था। जिस काम को प्रभु यीशु ने इस संसार में रहते हुए किया था, उसी काम को प्रभु के संदेशवाहकों को करने के लिए नियुक्त किया गया है। उन्हें अपने आप को प्रचार के हर क्षेत्र को अपने हाथ में लेकर प्रचार कार्य आगे बढ़ाना था। उन्हें पूरी तन्मयता तथा वफादारी से लोगों को ऐसे धन के बारे में बताना जिसे उन्होंने कभी खोजा ही नहीं, वो स्वर्गीय धन जो कभी खत्म नहीं होने का। शिष्यों को सौंपा गया काम हमारा भी है। आज पहले की ही तरह क्रूस पर कुर्बान मसीह और मृत्यु से पार होकर पुनरुत्थान प्राप्त करने वाले उद्धारकर्ता प्रभु को उन लोगों के सामने महिमामयी रूप में ऊंचा उठाता है जो प्रभु को जानते ही नहीं और उनके पास कोई आशा भी नहीं। उन पर आशा की ज्योति चमकाना है। प्रभु में सभी पास्टर्स, टीचर्स तथा धर्म प्रचारकों को घर घर जाकर उद्धार का संदेश लोगों को सुनाना है। प्रत्येक जाति, धर्म, देश के लोगों, जिन्हें प्रभु यीशु के द्वारा क्षमा पाने के लिए प्रभु के करीब लाना है, सिर्फ मुंह से बोल देने व रटी रटाई बात कहने के बदले ऐसे स्पष्ट, निर्णायक एवं कायल करने वाला सुसमाचार सुनाना है। सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए अंतिम चेतावनी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज सारा जगत मसीह लोगों की मसीहियत की ताकत का प्रमाण देखना चाहता है। केवल कुछ स्थानों में ही नहीं,
किंतु दुनिया के कोने कोने में लोगों को मसीह की दया की जरूरत है। जब मसीह यीशु स्वर्ग को उठा लिए गए, उन्होंने प्रचार का काम उन लोगों को सौंपा जिन्हें सुसमाचार की ज्योति प्राप्त हो चुकी थी। उन्हें उस काम को जगत में पूरा करना था। उसने और किसी माध्यम को सच्चाई का बखान करने के लिए नहीं दिया। तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। इस दृढ़ प्रतिज्ञा योजना का काम आज के युग तक पहुंचता है। परमेश्वर इस जिम्मेदारी को कलीसिया के ऊपर छोड़ देता है कि वो चाहे तो इसे स्वीकार करें या त्याग दें। हम सबके कांधों पर एक पवित्र काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो काम हमें सौंपा गया है वो है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मत्ती 28 आयत 19-20। तुम्हें अपने को इस काम को करने और लोगों तक उद्धार का सुसमाचार पहुंचाने के लिए समर्पित किया गया है। स्वर्गीय परिपूर्णता ही तुम्हारी सामर्थ होगी। सामान्य जीवन जीने वालों की बुलाहट। सामान्य लोगों को भी मसीह के कर्मचारी होना चाहिए। वे अपने साथियों के दुखों को बांटने का काम करें, जैसे प्रभु यीशु ने मानवता के लिए दुख सहा, और विश्वास से वे सब उसे अपने साथ काम करते हुए देख सकेंगे। सभी दूर व पास के इलाकों के सभी लोगों को बुलाया जाएगा, जो चाहे फल उगाते, अन्य अन्य व्यावसायिक काम करने वाले, अधिकतर जो उनके मन मस्तिष्क में होता है वही करते हैं, किंतु इन्हें सभी को शिक्षित किया जाएगा, उन लोगों के साथ जिन्हें अनुभव है। जैसे ही वे प्रभावशाली तरीके से मेहनत करना सीख जाते हैं, वे सत्य का पूरी सामर्थ्य के साथ प्रचार करने लगेंगे। स्वर्गीय पिता के द्वारा प्रदान किए गए सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली द्वारा बड़ी से बड़ी कठिनाई के पहाड़ों को रास्ते से हटाकर समुद्र में डाल दिया जाएगा। वो समाचार जो पृथ्वी के रहने वालों के लिए जो इतना अधिक महत्वपूर्ण है, सुना और समझा जाएगा। मनुष्य जान जाएंगे कि सत्य क्या है। आगे और आगे ये समाचार प्रचार का कार्य बढ़ता जाएगा, जब तक कि पृथ्वी के सब लोगों को चिताया नहीं जाता, और तब अंत आ जाएगा।
परमेश्वर उन लोगों को, जिन्होंने मानव निर्मित स्कूलों में अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, अपने काम के लिए उपयोग कर सकता है, बल्कि वह ऐसों को ही चुनेगा। परमेश्वर की शक्ति पर संदेह केवल तभी संभव है जब लोगों में परमेश्वर पर अविश्वासी होना पाया जाए। ये अविश्वास ही परमेश्वर की अथाह शक्ति, जो पूरे विश्व में व्याप्त है, उसको सीमित करती है, वह सामर्थ जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हां, ऐसे कई कमतर पाए गए बिन बुलाए लोग, जिन्हें अपने अविश्वास के प्रति सजग होना था, क्योंकि ऐसों के कारण कलीसिया की सामर्थ व्यर्थ जाती है या उसका सही उपयोग नहीं हो पाता। ये प्रचार कार्य की रुकावट बनती है, रास्ते बंद कर देती है, और जिससे पवित्र आत्मा मनुष्यों पर अपना काम नहीं कर पाता। वे उन्हें बेकार ही बैठाए रखती है, जबकि वे लोग अपनी इच्छा से जोश से भरकर प्रभु के मार्ग पर चलना चाहते हैं। ये आलस व अविश्वास कार्य में प्रवेश करने से रोकता है। कई लोग तो अपनी इच्छा से यीशु के वफादार प्रभावशाली सेवक परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ बन सकते थे, यदि उन्हें एक उचित मौका मिला होता। हर एक आत्मा के लिए एक सुअवसर है, वो उन्नति करें और आगे बढ़ें। वे जो प्रभु से जुड़े हैं, वे उसके अनुग्रह और इसके ज्ञान में बढ़ेंगे और सही अर्थों में स्त्री व पुरुष होंगे। यदि वे सभी जो प्रभु यीशु में सत्य में भरोसा करने का दावा करते हैं, उन्होंने ही अपनी योग्यताओं को और अवसरों का सही फायदा उठाया, सभी कामों को जानने सीखने और करने के लिए, जिससे वे मसीह में सामर्थी बन सकें। भले ही उनका कोई भी व्यवसाय, जैसे कोई किसान, कारीगर, शिक्षक या प्रचारक, यदि ये सब पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित होते, तो वे परमेश्वर के सक्षम कार्यकर्ता होते। कलीसिया में पाए गए वे लोग जो पूर्ण प्रतिभाशाली हैं,
ताकि किसी भी प्रकार के कार्य को करने में निपुण हैं, चाहे वे पढ़ाने वाले, इमारत या भवन निर्माण करने वाले या किसान, सामान्यतः कलीसिया को सुदृढ़ बनाने के काम में हाथ बटा सकते हैं। वे अपने समुदाय की सेवा करके या सब्बत स्कूल के शिक्षक का काम करके अपने को प्रचार कार्य में लगाकर या दूसरे काम करने वालों को कलीसिया में सम्मिलित करके इस काम को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके काम को जारी रखने के लिए प्रभु यीशु ने यहूदी सनहेड्रिन या रोम के शक्तिशाली, शिक्षित या प्रबुद्ध, अच्छा व्याख्यान देने वालों को नहीं चुना। यहूदी स्वधर्मी शिक्षकों को नजरअंदाज करते हुए गुरु प्रभु यीशु ने उन नम्र, अशिक्षित लोगों को सत्य का प्रचार करने के लिए चुना, जो पूरे जगत ने बड़ा बदलाव लाने वाले थे। इन लोगों को उसने अपने काम को करने के लिए प्रशिक्षित कर कलीसिया के अगवे होने के लिए प्रोत्साहन दिया। बदले में यही लोग अन्य लोगों को सिखाकर सुसमाचार प्रचार कार्य के लिए भेजें, ताकि वे अपने काम में सफलता पा सकें। उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति भी दी जानी थी। केवल मानवीय ताकत या बुद्धि का इस्तेमाल कर सुसमाचार प्रचार का काम नहीं होना था, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही। उनमें से जिनको हमारे प्रभु यीशु ने इस विशेष काम को सौंपा था, इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ। अधिकतर वे निम्नतम स्तर का जीवन जीने वाले स्त्री व पुरुष थे, जिन्होंने प्रभु से प्रेम करना सीखा और जिन्होंने ठान लिया था कि प्रभु के समान निस्वार्थ सेवा करेंगे। ये सभी नम्र हृदय वाले तथा प्रभु के शिष्यों, जिन्होंने यीशु के साथ इस संसार में सेवा करने का काम किया था, प्रभु ने उन्हीं पर अपना भरोसा रखा था कि वे ही संपूर्ण जगत में आनंद का सुसमाचार, जो प्रभु यीशु के द्वारा है, सुनाने का काम करेंगे। जीवन जो विजयी होता है, ये न केवल सच्चाई के प्रचार द्वारा और न ही बाइबल साहित्य के बांटने के द्वारा संभव है कि हम यीशु के गवाह हों। आओ हम ये याद रखें कि प्रभु यीशु के जैसा जीवन ही सर्वश्रेष्ठ व शक्तिशाली तरीका है, जो लोगों को मसीहत के पक्ष में आगे बढ़ाता है। वहीं एक मसीह व्यक्ति का घटिया चरित्र जगत में मसीहत को अधिक नुकसान पहुंचाता है, उसके सांसारिक होने से भी ज्यादा। एक पवित्र जीवन जीने के लिए दुनिया की सभी पुस्तकें उपयोगी या कारगर सिद्ध नहीं होती। मनुष्य उस पर भी विश्वास नहीं करता है जो कलीसिया में प्रभु का दास प्रचार करता है, किंतु कलीसिया कैसा जीवन जीती है, इस बात का लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रायः ये होता है कि पुलपिट से सुनाया गया प्रवचन उस व्यक्ति, जो अपने आप को सच्चाई का बड़ा जानकार कहता व समझता है, के जीवन जीने के तरीके से बिल्कुल उल्टा होता है। पुलपिट पर सत्य की दुहाई देने वाला असल जीवन में झूठ का सरदार होता है। यीशु मसीह का जीवन संपूर्णता से भरा हुआ बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्तित्व, जिसका घनिष्ठ संबंध परमेश्वर और इस पूरे मानवीय परिवार से जुड़ा था। मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने मनुष्य को उस प्रभाव से भर दिया कि वो स्वयं पर निर्भर होकर जी सके, ऐसा संभव ही नहीं था। व्यक्तिगत रूप से हम अपने साथियों, साथी कर्मचारियों से जुड़े होते हैं। परमेश्वर के लोगों का एक बड़ा हिस्सा, जो आपस में अनोखी समझ व निर्भरता के लिए मिला रहता है। कोई भी व्यक्ति अपने सहयोगी के बिना अकेले काम नहीं कर सकता। प्रत्येक की भलाई के लिए दूसरों का प्रभाव जरूरी होता है। परमेश्वर का उद्देश्य भी यही है कि हर कोई ये महसूस करे कि उसे दूसरों के सहयोग की आवश्यकता है, तथा दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को उनकी खुशी के लिए दे देना और भी भला है। बाइबल का धर्म, बाइबल के शुरू से लेकर अंतिम पन्ने तक और ना ही चर्च भवन की दीवारों के भीतर तक सीमित होता है। इसका उपयोग केवल लाभ प्राप्ति के समय पर, विशेष अवसरों पर ही नहीं होना चाहिए कि जब जरूरत पड़ी तब उठाकर पढ़ लिया और फिर उसे उसके स्थान पर सावधानीपूर्वक रख दिया। बाइबल प्रतिदिन पढ़ी जाने वाली किताब है, जो प्रतिदिन जीवन को पवित्र बनाती, हर प्रकार के कार्य को पूरा करने तथा सारे सामाजिक रिश्तों को निभाने में मदद करती है। अतः इसका अध्ययन प्रतिदिन जरूरी है। परमेश्वर का ये उद्देश्य है कि वो अपनी महिमा लोगों के बीच करे। वो उन लोगों की बड़ी आशा से प्रतीक्षा करता है जो प्रभु यीशु के कहलाते और मन, कर्म व वचन से उसके प्रतिनिधि हैं। उनके विचार शुद्ध,
उनके वचन उत्कृष्ट और उत्साहित करने वाले तथा आसपास वालों को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पास लाने वाले हों। प्रभु यीशु का धर्म मसीहत की बुनियाद ऐसे लोगों के वचनों के प्रचार एवं किए गए उद्धार के कार्यों पर निर्भर करती है। इन लोगों का हरेक काम, हरेक लेन देन मसीह की उपस्थिति की सुगंध से भरपूर होना चाहिए। सभी व्यापारी अपना लेन देन का काम इस तरह से करें जिससे उसकी स्वामी भक्ति के कारण उसके गुरु की महिमा हो। वो अपना धर्म हर जगह हर वस्तु के लिए इस्तेमाल करे कि हरेक काम में वो यीशु की आत्मा की सच्चाई का बखान हर व्यक्ति से करे जिससे वो व्यापार करता है। एक कारीगर भी अपने प्रभु का कर्मठ व भरोसेमंद प्रतिनिधि है, जो प्रभु स्वयं यहूदा के शहरों में एक मजदूर की तरह ईमानदारी से काम करते हुए साधारण मेहनती व्यक्ति का जीवन बिताया। हर वो व्यक्ति जो अपना नाम मसीही रखता और उसके काम करता है, उसके अच्छे कामों को देखकर वो व्यक्ति अपने रचियता और छुटकारा दिलाने वाले की प्रशंसा करता है। स्त्रियां प्रचारक के रूप में। स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी सच्चाई को छुपाने में लगे हो सकते हैं, जहां वो झूठ काम करता है और प्रकट भी हो जाता है। ऐसे लोग अपना स्थान ऐसे ही काम में लगाते और परेशानी में पड़ जाते हैं। तब परमेश्वर उनके द्वारा काम करेगा यदि वे अपने कर्तव्य करने की भावना पूर्ण होते और प्रभु की पवित्र आत्मा के प्रभाव में होकर परिश्रम करते। उन्हें इस समय केवल स्वयंभू होने की जरूरत होती है। तब हमारा परमेश्वर, जो हमारा रक्षक है, इन स्वयं का बलिदान करने वाली स्त्रियों पर अपने मुख का प्रकाश चमकाता है, जो उन्हें वो ताकत प्रदान करता है जिसके द्वारा वे पुरुषों से भी आगे बढ़ जाती हैं। वे अपने परिवारों में जो कार्य कर सकती हैं, वे काम पुरुष नहीं कर सकते। एक ऐसा काम जो अंतर मन तक प्रभाव डालता है। स्त्रियां अपने कामों के द्वारा लोगों के हृदयों तक पहुंच सकती हैं, वहां पुरुष नहीं पहुंच पाते। उनका काम करना जरूरी है। बुद्धिमान और नम्र स्त्रियां अपने घरों में लोगों को सत्य की समझाइश काफी अच्छी तरह से कर सकती हैं। इस प्रकार समझाया गया, प्रभु का वचन उन्हें प्रभावित करेगा और उसके प्रभाव से पूरा परिवार सत्य का रास्ता अपनाकर बदल सकता है।
जितने भी प्रभु का काम करने वाले हैं, उनमें मरियम और मार्था दोनों के गुणों का मिला जुला रूप होना चाहिए। सेवा करने की हार्दिक इच्छा और सत्य के प्रति सच्चा प्रेम, स्वार्थ और स्वार्थीपन पूरी तरह से दूर होना चाहिए। परमेश्वर ऐसी ईमानदार महिला कार्यकर्ताओं को बुलाता है जो मितव्ययी प्रेमी, नम्र स्वभाव एवं सिद्धांतवादी हों। वह उन स्त्रियों को जो समझदार हों और जो स्वार्थ को अपने दिमाग से अलग कर दें, अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं से अलग होकर अपना पूरा ध्यान प्रभु यीशु पर केंद्रित करें, सच्चाई का ही बखान करें, उन लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करें जिनसे उन्हें बढ़ावा मिलता है। ये सब करके वे बड़े परिश्रम से आत्माओं को प्रभु की ओर फेर सकती हैं। बहनें अपनी सामयिक पत्रिकाओं के लिए प्रभावकारी तरीके से खरीदारों को प्रभावित कर सकती हैं और इस प्रकार बहुत लोगों के मनों तक सत्य की रोशनी पहुंचा सकती हैं। कुछ संभ्रांत स्त्रियां हैं जिनके पास नैतिक साहस है, जो सत्य का पक्ष लेने के लिए संबंधित घटनाओं का उदाहरण देकर साबित करती हैं। ये स्वयं भी सत्य को पूरी तरह से अपना चुकी होती हैं। इनके पास प्रभु का काम सफलतापूर्वक करने की कला समझाने का सही व सरल तरीका एवं योग्यता होती है। अतः मसीही स्त्रियों के लिए भी प्रभु का काम करने के लिए बुलाहट है। हमारी बहनें एक सतर्क व सजग लेखक के रूप में उन मित्रों की असल भावनाओं का पता लगा सकती हैं जिन्होंने पत्र व पत्रिकाएं पढ़ी हैं। इन स्त्रियों की जरूरत है जो सिद्धांतवादी और दष्ट प्रतिज्ञ हैं। वे विश्वास करती हैं कि हम वास्तव में अंतिम दिनों में जी रहे हैं और हमारे ही पास वह अंतिम चेतावनी से पूर्ण विशेष संदेश है जो जगत को सुनाना है। ये वही हैं जिन्हें परमेश्वर अपनी राह पर चलने और प्रचार काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये सभी उस बहुमूल्य काम को अनेक तरह से पूरा कर पत्रिकाएं सब जगह फैलाने और साइंस ऑफ द टाइम्स को बांटने का काम कर सकती हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं कि महिलाएं एक मतदाता हों या दफ्तर में काम करें, उन्हें तो मिशनरी होना चाहिए। जो सच्चाई का प्रचार प्रेरिताई के रूप में सहयोग करते हुए पत्रिकाएं बांटते हुए सामयिक पत्रिकाओं के खरीदारों को उनके बारे में सलाह देना समझाना आदि काम में लगी रहें, क्योंकि वे ऐसे कई तरह से सच्चाई का प्रचार कर सकती हैं। यदि 20 स्त्रियों में से एक जो इस पवित्र कार्य को अपने परम कर्तव्य के रूप में अपना ले, तब हम अनेक लोगों को सच्चाई की ओर मुड़ते हुए देख सकेंगे। वे महिलाएं जो इस कार्य को कर सकती हैं, जो स्वयं को अधिक महत्व नहीं देती किंतु नम्र, दीन व उदार हृदय की हैं, ऐसी महिलाएं ही प्रभु येशु की नम्रता लिए हुए जहां कहीं भी आत्माओं को बचाने का काम मिलता है उसे पूरा करे बिना नहीं रुकती। सैकड़ों बहनें आज इस काम में लगी होती यदि उन्हें यह काम दिया गया होता। वे खुद और अपने बच्चों को साधारण तथा कपड़े पहनाती जो साफ और ज्यादा चलने वाले हों, ज्यादा साज सज्जा वाले भड़किले कपड़े न हों। वे अपना समय दिखावे में व्यतीत न करते हुए प्रचार के कार्य में लगाएंगे। दूर रहने वाले मित्रों को पत्र लिखे जा सकते हैं। अच्छा काम करने के लिए सभी बहनें एक दूसरे से सलाह मशवरा कर सकती हैं। पैसों की बचत की जा सकती है, जिसको परमेश्वर को दान देने के लिए पेपर खरीदने या पत्रिकाएं भेजने के लिए किया जा सकता है। वे लोग जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्हें काम करने जाना चाहिए। हर एक बहन जो अपने आप को परमेश्वर की बेटी होने का दावा करती है, उसकी वास्तव में यह जिम्मेदारी है कि जहां वह कर सके लोगों की मदद करे। हमारी बहनें यह भी इच्छा रखती होंगी कि उन्हें तो इस उत्तरदायित्व से बख्श दिया जाए जिसमें अधिक दिमाग और समझ बूझ की जरूरत पड़ती है। फिर भी यही तो सही है कि एक सच्चे मसीही अनुभव को प्राप्त करें। वे मिशनरी क्षेत्र के कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हो सकती हैं, अपने स्वयं की रुचि के अनुसार पत्र पत्रिकाएं बांटकर अपने विश्वास को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित कर सकती हैं।
बहनों, प्रचार के कठिन परिश्रम वाला सजगता से किए गए काम से हार नहीं मानना। ये एक ऐसा काम है जिसे आप अपनी इच्छा से सफलतापूर्वक कर सकती हैं, यदि आप केवल प्रभु से जुड़े रहें। जांच पड़ताल के पत्र लिखने के पूर्व अपने हृदय को नम्र कर प्रभु से प्रार्थना करें कि आप उन जंगली शाखाओं को सच्ची दाखलता में पोषण करने हेतु जोड़ देने के काम करें और प्रभु के लिए फल लाने का काम कर प्रभु की महिमा करें। वे सभी उदार हृदय लोग जो इस काम को करने में हिस्सा लेते हैं, वे वास्तव में अपने आप को प्रभु की दाख की बारी में काम करने के लिए लगातार शिक्षित कर रहे होते हैं।